करते हैं।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
हाँ जी, ग्यारहवां श्लोक। यथा पुरस्तात् भविता प्रतीता औद्दालकी आरुणी मत प्रसृष्ट। कहते हैं यथा पुरस्तात्, जैसे पहले आपके पिता थे तथा भविता वैसा ही रहेंगे। प्रतीतः, आप निश्चिंत रहिए, मेरी ओर से सुनिश्चित रहिए। कौन आपके उद्दालक के जो पुत्र आरुणी, अरुण के पुत्र जो आपके पिता है, वो मत प्रसृष्टा मेरे द्वारा भेजा गए आपको देख करके जैसे पहले थे वैसा ही रहेंगे, सुनिश्चित रहिए। सुकम रात्रि शहिता।
उद्दालक का पुत्र हो सकता है, इसके पिता का नाम उद्दालक नचिकेता, वह उद्दालक वह आरुणि, तुम जो मेरे द्वारा भेजे गए हो, तुम जब जाओगे तो पहले की तरह तुम्हें मिलेंगे अवश्य।
ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं है ना कि आरुणी यानी नचिकेता को कहा जा रहा है या उनके पिता को कहा जा रहा है।
जी, औद्दालक और आरुणी की एक कैसे
बच्चे? हाँ जी,
औद्दालक और आरुणी, आपने जो बताया था मुझे ऐसा याद है, औद्दालक और आरुणी दोनों को एक ही बताया था आपने, नचिकेता का पिता। लेकिन इतिहास में जैसे आता है, आरुणी तो वो था जो मेड बना के लेट गया था, और औद्दालक वो था जो गुरु ने गाय चराने के लिए भेजा था और दूध ना पीने के लिए कहा था, तो उसने आग के जो पेड़ होते हैं उनका दूध पी लिया था।
उपमन्यु है। खैर, वो तो कोई बात नहीं, ऐसा है एक ही नाम से कई लोग हो सकते हैं, क्योंकि गोत्र से चला जा, जैसे गौतम कहने से गौतम ऋषि, वो कौन गौतम ऋषि है, गौतम कुल में जो जो उत्पन्न हो गए उसको गौतम कहते हैं, भरद्वाज कुल में जो जो उत्पन्न हो उसको भारद्वाज कहते हैं, जो गर्ग गोत्र में उत्पन्न उसको गार्गी कहते हैं, तो यूं पता नहीं चलेगा आपको वही थे या कोई और थे। इतिहास में ऐसा स्पष्ट नहीं है। चलें, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, पिता का ही मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये तो नचिकेता के लिए भी कह रहे हैं
जी।
ये नचिकेता जो उद्दालक के पुत्र है नचिकेता, अरुण के पुत्र है नचिकेता, मेरे द्वारा भेजा गया आप, जब आप मेरे द्वारा भेजा जाएगा तो यथा पुरस्ता, जैसे पहले आपके पिता थे वैसे ही भविता रहेंगे, उसके लिए आप प्रतीतः निश्चिंत रहिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो यहां तो कुछ ऐसा स्पष्ट है ही नहीं है, कोई इसको पिता के नाम को लेकर के वर्णन करता है, कोई पुत्र के नाम के लेकर के वर्णन करता है। दादा का तो खैर इतना प्रसंग नहीं है। नहीं नहीं, अभी आपने व्याकरण नहीं पढ़ा है ना, तो थोड़ा व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उद्दालक के पुत्र को उद्दालिका कहेंगे।
तो उद्दालक क्यों होता? कुछ उद्दालक को भेजने पर
द्वितीय आना चाहिए, प्रतिष्ठा है कर्मवाच,
कर्मवाच में है वो, गया ना प्रसिष्ट मत प्रसिष्ट, मेरे द्वारा भेजे गया तू, कर्म में है ना ये कर्म, कर्मवाच में है। खैर वो तो कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं है, चाहे पिता को कहो पुत्र को कहो, उसमें शब्दों में मत जाइएगा। मुख्य बात यह है कि जब मेरे द्वारा आपको भेजा जाएगा तो आपके पिता जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, बस यही मुख्य बात है। हाँ जी, बहुत दूर बैठ गए। हाँ जी बोलिए, इधर दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति तो वही है, सुखम रात्रि शयिता, आपके पिता जो है रात्रि में सुखपूर्वक सोएंगे। हाँ जी, नहीं जिस श्लोक को आप कह रहे थे ना उसी की दूसरी पंक्ति का अर्थ पूछ रहे हैं। यही बताया था,
रात्रि शयिता, तुम्हारे पिता तुम्हें ठीक ही मिलेंगे, तू रात्रि पर ठीक से सो जा।
नहीं नहीं नहीं, ये आप कह रहे हो, ऐसे नहीं बताया मैंने, मैंने तो यही कहा सुखम रात्रि शयिता, आपके जो पिताजी है वो सुखपूर्वक सोएंगे, चिंता मत करो, यही बताया था।
रात्रि में कैसे,
क्या
रात्रि,
रात्रि ही सुखम शयिता, शयिता रात्रियों को, यानी रात्रियों में यानी जो जो रात्रि आएंगे ना सारी रातें जो है वो सुखपूर्वक सोएंगे,
रात्रियों को सुख,
रात्रियों को नहीं, रात्रि, रात्रि ही सुखम शयिता, यानी जितनी भी रातें आएंगी हाँ वो सुख से कटेंगी,
रात्रि जो
क्यों
नदी,
कौन सी विभक्ति है जी, रात्रि ही, हाँ तो ठीक है रात्रियों को सुखपूर्वक सोएंगे, ठीक है यानी रात रात रातें जो है सुखपूर्वक रहेंगी। ये गौतम नहीं, वीतमन्यु, वीतमन्यु और क्रोध रहित होंगे, त्वाम ददृशिवान आपको देख करके, त्वाम ददृशिवान आपको जब देखेंगे तो वो वीतमन्यु हो क्रोध रहित होंगे और सुखपूर्वक सोएंगे रात को। मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु से मुख से छूटे हुए आपको देख करके आपके पिता सुखपूर्वक सोएंगे और वीतराग होंगे यानी वीतमन्यु हो जाएंगे। वो अन्वय है, कोई बात नहीं, आप ऐसा भी अन्वय कर सकते हो।
तुमको मृत्यु मुख से छोड़ रहा देख करके तुम्हारे पिताजी पहले के समान हो जाएंगे, तो तू उत्तरी आरुणी आराम से रात्रि भर सो
ना, ऐसा नहीं,
क्योंकि बिल्कुल बन रहा है,
नहीं बन नहीं रहा है, गलत मत,
नहीं बन रहा है, मैं वाक्य बना के दिखा रहा,
आप बना रहे हो पर वो विषय ही नहीं है, तू सुखपूर्वक सो ये कहने का कोई मतलब नहीं है, वो तो वर दे रहे हैं आपके पिता, पिता के बारे में वर दे रहे हैं ना, पिता के लिए कहा जा रहा है,
हाँ, तो पिता के बारे में ठीक है ऐसा ही होगा तो आराम से सो, लेकिन
अब तो क्यों खींचतानी करो, ये पिता के लिए कहा जा रहा है, सुकम रात्रि शयिता वीतमन्यु, ये तो उसी के लिए पिता के लिए आ रहा है, आपके पिता जो है वीतमन्यु क्रोध रहित होकर के सुखपूर्वक सोएंगे। हाँ जी, हाँ उस वर का ही उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अगला श्लोक देखिएगा, सोलहवा, ये जो पंद्रहवें श्लोक में जो उसने उत्तर दिया था यानी जो बताया उसका सीधा सीधा वैसा का वैसा उत्तर सुना दिया, हाँ तो उस प्रसंग को लेकर के आगे बताए जा रहे हैं। तम अब्रवीत प्रियमानः महात्मा वरम तव इह अद्य ददामि भूयः तवैव नामना भविता भवितव भवितायमग्नि, हाँ तवेव नामना भवितायमग्नि श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपम गृहाण, महात्मा, महान आत्मा, महात्मा यानी महात्मा मृत्यु, जो कि महान आत्मा है, श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। प्रियमाना, प्रसन्न होकर के तम अब्रवीत, उस नचिकेता से कहा, क्या कहा, अद्य इह तव भूय वरम ददामि, अद्य अब मैं आज तुझे प्रसन्न होकर के भूय वरम ददामि, एक और वर देता हूं, इतना प्रसन्न हो गया हूं आपको, आपके इस बुद्धि को सुन करके जान करके मैं प्रसन्न हो गया हूं, आपको एक और वर देता हूं। हाँ जी, तीन के अतिरिक्त, भूय का मतलब और अधिक, यानी एक और अधिक वर देता हूं। क्या वर देता हूं, तव एव नामना भविता अयम अग्नि, जिस अग्नि के बारे में जो मैंने आपको बताया, जो मार्ग आपको दिखाया है, वो मार्ग, वो अग्नि तेरे ही नाम से पुकारी जाएगी, उस अग्नि को आपके नाम से पुकारा जाएगा। तव एव नामना भविता अयम अग्नि, ये जो अग्नि है जिसकी चर्चा मैंने आपको आपके सामने किया, जिस अग्नि को आपको सुनाया, बताया, उपदेश किया है, वो अग्नि आपके नाम से कहलाएगी। फिर कहते हैं इमाम अनेक रूपाम श्रृंखलाम गृहाना, इस अनेक रूपों वाली, इस अनेक श्रृंखला वाली इस माला को ग्रहण करो, गृहाना ले लो, मैं आपको ये भी भेंट देता हूं, ये माला लो। कोई हार दिया होगा, कोई माला दिया होगा, अथवा इस अग्नि की जो माला है, श्रृंखला है, जिस मार्ग पर आपको चलना है, वो श्रृंखला को मैं आपको दे रहा हूं, बस अब आपके नाम से ये कहलाएगी। अनेक है, उसमें अनेक उपाय हैं, अनेक साधन है उसके अंदर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ऐसे आठ मालाएं हैं, अथवा आप अलग अलग ढंग से ले सकते हैं। इस मार्ग में ये पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों को आपको जानना है, 24 पदार्थ हैं, उनको जानो, कुछ भी अर्थ कर सकते हैं। जिस मार्ग को आपको बताया है, उस मार्ग में बहुत सारे साधन हैं, और वो साधन मानो कि माला के एक एक पर है, एक एक विभाग है, ऐसा समझ लेना। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, परेशानी हो रही कुछ समझने में? अच्छा ठीक है, चले हम आगे। और जो अग्नि, उनको अग्नि का उपदेश दिया है, वो अग्नि किस प्रकार की है, त्रिनाचिकेतः त्रिभिः एत्या संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु, ब्रह्मयज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचाय्य इमाम शांतिम अत्यंतमेति। हाँ जी, ब्रह्मयज्ञम भी कहते हैं और ब्रह्मयज्ञम भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट में दिया है। दोनों ले सकते हो, ब्रह्मयज्ञम भी कह सकते हो, ब्रह्मयज्ञम भी कह सकते हो, दोनों का अर्थ एक ही है। क्या अलग है बताओ,
जो कर रखा है तो अलग अलग अर्थ कर रखा है,
क्या अर्थ अलग अलग किया है?
ब्रह्मयज्ञ मतलब ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञान,
ज्ञान हाँ,
ब्रह्मयज्ञ
क्या है, ब्रह्मयज्ञ
जो होता है संध्या,
तो इत्यादि क्या है, और इत्यादि में और कुछ बताओ फिर, इत्यादि ब्रह्मयज्ञ तो संध्या हो गया, और इत्यादि से और कुछ कहना पड़ेगा ना, तो तुम्हें कौन सा अर्थ बता, कोई अलग बता रहा हूं। ब्रह्मयज्ञ में दोनों आते हैं, और ब्रह्मयज्ञानम में भी वही कहो, स्वाध्याय कहो तो भी ब्रह्मयज्ञ है, और संध्या कहो तो भी ब्रह्मयज्ञ है, इसमें कौन सा आप अर्थ अलग कर रहे हैं आप मेरे से? एक ही बात है, ब्रह्मयज्ञम भी कहो और ब्रह्मयज्ञम भी कहो, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मयज्ञ में दोनों आते हैं, स्वाध्याय भी आता है और संध्या भी आती है। ठीक है, तो कह रहे हैं अजी,
ब्रह्मतः
ठीक है, वो ज्ञान ही है ना, वेद ज्ञान ही तो है, ब्रह्म से उत्पन्न है, ये ब्रह्म प्रदत्त है, ब्रह्म प्रोक्तम है, एक ही बात है। ब्रह्म से उत्पन्न का मतलब ब्रह्म प्रोक्तम, ब्रह्म के द्वारा कहा गया वेद ज्ञान, ठीक है। या ब्रह्म यज्ञम कहो तो ब्रह्म की उपासना, ठीक है, दोनों एक ही बात है। वेद पढ़ो तो वेद में जो जो आदेश दिए उनका पालन करो, या उपासना करो तो उपासना में जो जो ईश्वर की आज्ञा उन सबका पालन करो। तो इसलिए ब्रह्म यज्ञम कहो ब्रह्म यज्ञम कहो एक ही बात है, शब्दांतर है अर्थांतर नहीं है। तो कहते हैं त्रिनाचिकेतः, ये जो अग्नि है वो त्रिनाचिकेतः अग्नि कहलाती है, यानी तीन प्रकार की अग्नियां हैं। त्रिभी संधिम त्रिभी एत्या, तीनों अग्नियों के माध्यम से तीन संधियों को प्राप्त करके, हाँ जी, तीनों अग्नियों वाला, हे नचिकेता तू तीनों अग्नियों वाला बनो। और त्रिभी संधिम एत्या, और इन तीनों अग्नियों के संधियों को प्राप्त करके त्रिकर्मकृत, तीनों कर्मों को करने वाला बनेगा। तब जन्म मृत्यु तरती, उस स्थिति में आप जन्म और मृत्यु से तर पाओगे, तर जाओगे, जन्म और मृत्यु से पार हो जाओगे। ब्रह्म यज्ञम, ये ब्रह्म यज्ञ है उसकी स्तुति करो, क्यों, देवम वो देव है, दिव्य गुणों से युक्त है। ईड्यम वो स्तुति करने योग्य है, ब्रह्म यज्ञम जो है ब्रह्म यज्ञ करो, उपासना करो, क्योंकि वो देवम देव है, वो महान है, उत्कृष्ट है। ईड्यम स्तुति करने योग्य है, ऐसा विदित्वा जान करके निश्चय, निश्चय करता है, निश्चय करके अत्यंतम इमाम शांतिम एति, वो अत्यंत इस शांति को, मोक्ष को या स्वर्ग को एति प्राप्त कर लेता है। हाँ जी, हाँ जी, तीनों अग्नियों को धारण करने वाला जो त्रिनाचिकेता नचिकेता है, क्योंकि उसके नाम से उस अग्नि को बोल दिया, तो तीनों अग्नियों को धारण करने वाला जो नचिकेता है वो तीनों अग्नियों के जो संधियां हैं उन संधियों को एत्या प्राप्त करके, जान करके, उनको समझ करके, उनका आचरण करके, त्रिकर्मकृत तीनों कर्मों को करने वाला बनता है। और वो तीनों अग्नियां क्या है तो कहा है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास, तीन संधियां हैं। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच में एक संधि, और गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच में दूसरी संधि, और वानप्रस्थ से सन्यास के बीच में तीसरी संधि। ये तीनों संधियों को प्राप्त करके वो जन्म मृत्यु से तर जाता है, ये प्रक्रिया बताई जा रही है। क्रम से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट होता है, विद्या अध्ययन ग्रहण करता है, फिर गृहस्थ में प्रवेश करता है, गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करता है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ लेता है, वानप्रस्थ से अपनी तैयारी करके फिर सन्यास में प्रविष्ट होता है। हाँ जी,
ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास लेना
कोई कोई करता है, प्रक्रिया तो यही है, इसी प्रक्रिया से सब जाते हैं।
जो करता है वो गलत
है। कौन
जो करता है?
वो विकल्प है, गलत नहीं है, वो विकल्प है, कोई कोई करता है, सब ऐसे नहीं कर सकते ना, विधान तो यही है ना, वो तो विकल्प है, पकड़ में आ रहा है ना, विधान तो यही है, इसी प्रकार से जाता है व्यक्ति, सबका सामर्थ्य नहीं होता है, सब लोग इतना छलांग नहीं मार सकते, जो मार सकता हो जाए, वो तो एक एक सीढ़ी में चढ़ता हुआ जाएगा, कोई इतना सामर्थ्य रखता हो वो 10 सीढ़ियां को लांग करे, छलांग लगाए लगाए, छलांग लगा करके पहली मंजिल में पहुंच जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति छलांग नहीं मार सकता, तो ठीक है भाई एक एक सीढ़ी में से जाओ। विधि, विधि तो यही है, जो विधि है उसी विधि का ही उपदेश किया जाता है ना, पकड़ में आ रहा है ना, विकल्प तो विकल्प होता ही है, विधि से विकल्प का निषेध नहीं होता है। यहां ये विधि है, उस विधि को समझाया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या तीनों कर्मों को करने वाले गृहस्थ को, यानी गृहस्थ गृहस्थ से वानप्रस्थ वाली संधि को करने वाला, और वान गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाने की संधि को करने वाला, और वानप्रस्थ से संन्यास को प्राप्त करने की, जो तीन संधियों को पूरा करने वाला, ये इसको कहते त्रिकर्मकृत, तीनों कर्मों को करने वाला, यानी तीनों संधियों को पूरा करने वाला। बोलो कुछ। तीन संधियों को प्राप्त करना ही त्रिकर्मकृत कहलाता है। उस व्यक्ति को त्रिकर्मकृत नचिकेता कहते हैं, या त्रिकर्मकृत वो करता है, त्रिकर्मकृत तीनों कर्मों को करने वाला, यानी तीनों संधियों को प्राप्त करने वाला। यानी ये संधि अपने आप में वैसी संधि नहीं है, संधि को प्राप्त होने का मतलब है ऐसा कर्म करना, मतलब गृहस्थ से ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाना, ये जो संधि को पूरा कर रहा है, यानी ऐसा कर्म कर रहा है ताकि उस संधि को प्राप्त हो रहा है, ये बात है। क्योंकि उसके नाम से ही अग्नियों को कहा गया ना, उसका नाम दे दिया, नचिकेता के नाम से उन तीनों अग्नियों का नाम दिया है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास, ये तीनों संधियों को त्रिनाचिकेता अग्नि कहा है। ये तीनों अग्नियां हैं, ये तीनों संधियों को तीन अग्नि कहते हैं, और इन तीनों अग्नियों को नाचिकेता अग्नि कहते हैं, यानी नचिकेता नाम वाली अग्नि है, उसके नाम से ही इन अग्नियों को पुकारा जाता है। हाँ जी,
संधियां
क्या तुक्का क्या होता है? ये तो प्रमाण, यही तो प्रमाण है, और कौन सा प्रमाण लाते हैं?
दोनों के बीच में जो कौन सी संधि लगाएंगे?
नहीं, गृहस्थ ब्रह्मचर्य, सुनिए, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाना, यानी ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थ में जाना, उसको प्राप्त करना, तो इसी को तो संधि कहते हैं। किस अंतराल को कह रहे हैं? कोई अंतराल नहीं है, पर कोई गैप नहीं है, कोई समय है, पहले कोई रुक जाता हो फिर उसके बाद उसमें, ऐसा नहीं है, उसको पूरा करके उसमें जाना, बस उसमें प्रवेश करना ही संधि है। नहीं नहीं नहीं, समझे नहीं आप, गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करके गृहस्थ में प्रवेश करना, गृहस्थ में प्रवेश करना ही एक संधि है, फिर गृहस्थ को पूरा करके वानप्रस्थ में प्रवेश करना ही दूसरी संधि है, और वानप्रस्थ को पूरा करके संन्यास में प्रवेश करना ही तीसरी संधि है। ऐसा पकड़ में आया? फिर अंतराल अंतराल कुछ नहीं है, इसको संधि कहा है, यहीं से चल रहा है, ये बता रहे हैं, ये प्रमाण है ना, इनको उपनिषदकार है, ऋषि है, बता रहे हैं, यही प्रमाण है। ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, और कहीं बताया है या यही ये तुक्का है भाई? ये बता रहे हैं ना, यही तो प्रमाण है, जो शास्त्र बता रहा है उसी को तो प्रमाण कहेंगे, शब्द प्रमाण है, फिर तुक्का कहां से लाए?
संधि की परिभाषा तो नहीं करी है यहां पे,
कोई जरूरी नहीं है ना, यहाँ परिभाषा करनी नहीं है, ये इसको यहाँ कोई अलग से संधि इसको कहते हैं, ऐसे कोई परिभाषा यहाँ परिभाषा करना नहीं है, बता दिए बस, इसी का संधि है, और कहीं बताया तो धर्म गृह सूत्रों में बहुत बताया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करके गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए, उसको पूरा करके वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए, वानप्रस्थ को पूरा करके संन्यास में प्रवेश करना है, गृह सूत्रों में बहुत बताया है, बहुत बताया वहां पर, पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर आश्रमों से संबंधित गृह सूत्रों में भरा हुआ है, और धर्म ग्रंथ भी एक दो नहीं है, बहुत है, बहुत धर्म ग्रंथ है, अलग अलग वेद के अलग अलग धर्म ग्रंथ है। ठीक है, चलें। अजी अग्नि क्या चीज है? वो अग्नि का मतलब है मार्ग, हाँ, जिस मार्ग में चल करके आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो उस मार्ग को अग्नि दिया है, उसका नाम अग्नि, ठीक है ना। अब उस वो कौन सी अग्नि है? ब्रह्मचरी आश्रम ही अपने आप में अग्नि है, गृहस्थ आश्रम अपने आप में अग्नि है, और वानप्रस्थ आश्रम अपने आप में अग्नि है, संन्यास आश्रम अपने आप में अग्नि है। उस अग्नि को प्राप्त करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करना, यानी एक अग्नि को प्राप्त कर लिया, फिर गृहस्थ में प्रवेश किया तो दूसरी अग्नि को प्राप्त कर लिया। ऐसा ब्रह्मचारी तो अपने आप में है, पैदा होते वो ब्रह्मचारी है, उसको तो विद्या ग्रहण करना ही है, अनिवार्य है, ठीक है। अब उसको पूरा करके जब गृहस्थ में प्रवेश करता है तो वो उसको समाप्त करके गृहस्थ में प्रवेश करना ही एक संधि हो गई। ऐसा तो ये जो आश्रम है ना, ये मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने के, इनमें से गुजरते हुए आदमी को पहुंचना पड़ता है, इसके बिना नहीं पहुंच सकता व्यक्ति, ये है नियम। स्पष्ट हो गया? इन आश्रमों को ही अग्नि शब्द से कहा जा रहा है, और ये अग्नि क्या है? मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का, क्योंकि इन आश्रमों में जो आपको कर्तव्य करने हैं उन सबको जानना है ना। अग्नि का मतलब ज्ञान है, उस आश्रम का पूरा ज्ञान आपको करना है और निर्वाह भी करना है उसमें, ऐसे गृहस्थ आश्रम का जो ज्ञान आपको प्राप्त करना है उसमें भी निर्वाह करना है, ऐसा, इसलिए इनको अग्नि शब्द से कहा है। चले अगला श्लोक देखिएगा। त्रिनाचिकेतः त्रयमेतद् विदित्वा या एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतम् सह मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं त्रिनाचिकेतः, त्रिनाचिकेता तीनों अग्नियों का सेवन करने वाला, त्रयम एतद विदित्वा, त्रयम एतद इन तीनों अग्नियों को विदित्वा जान करके, यह जो व्यक्ति, एवं यह विद्वान, यह विद्वान जो विद्वान इन तीनों अग्नियों को जान करके एवं इस प्रकार से चलता है उन तीनों आश्रमों में, चिनुते नाचिकेतम, नाचिकेतम अग्निम चिनुते, नचिकेता संबंधी इस अग्नि को चिनुते चयन करता है, चुन लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। पकड़ में आ रहा है? नहीं समझ में आया फिर देख लीजिएगा। यह विद्वान, जो ये विद्वान, कैसा विद्वान? त्रिनाचिकेता तीनों अग्नियों को जानने वाला, फिर कहते हैं वो त्रयम एतद विदित्वा इन तीनों अग्नियों को जान करके, ठीक है, तीनों अग्नियों को जान करके नाचिकेतम चिनुते, नचिकेता अग्नि को वो चुन लेता है, चयन कर लेता है, उसको जान लिया फिर उसको चुन लेता है, यानी उसको स्वीकार करता है, पहले जानेगा तब उसको करेगा ना क्रियात्मक, तीनों अग्नियों को जानता है और जान करके उनको चयन करता है, यानी क्रिया में व्यवहार में ले आता है। ऐसा जो करता है, ऐसा जो विद्वान ऐसा करता है, सह वो विद्वान मृत्युपाशान, मृत्यु के पाशों को, जन्म मृत्यु को, विशेषकर मृत्युपाशान मृत्यु के पाशों को, पुरतः प्रणोद्य पहले से ही उसको हटा देता है, जो उसके ऊपर मृत्यु के पाश, जब भगवान यमराज जो है ना मृत्यु पाशों को फेंकता है ना, मेरी ओर देखिएगा, जो कथा में सुनते हैं ना, जब मरने वाला होता है तो उसकी आत्मा को ले जाने के लिए यमदूत आता है, और वो यमदूत जो है पाशों को फेंकता है, एक रस्सी सी होती है ना, उसको फेंकता है आत्मा को निकालने के लिए आपके शरीर के ऊपर। तो जो मृत्यु पाश है, रस्सी है, उसको जो फेंकने वाला है भगवान आपके ऊपर, फेंकने से पहले ही उसको हटा देता है, उस रस्सी को वो झगड़ा समाप्त कर देता है, मृत्यु को होने नहीं देता है, इसका यह अभिप्राय है। तो कहते हैं, हाँ जी पहले पूरा कर लीजिएगा इसको, तो कहते हैं सह मृत्यु पाशान, वो मृत्यु के पासों को पूरतः प्रणोद्य, पहले से ही प्रणोद्य दबा देता है, यानी हटा देता है उसको, और हटा करके शोकातिगह, शोक रहित हो जाता है, शोक रहित हो जाता है, अब उसको कोई दुख नहीं होता है क्योंकि उसने मृत्यु को जीत लिया है। और स्वर्ग लोके मोदते, फिर मोक्ष में, स्वर्ग में वो प्रसन्न होकर के रहता है। हाँ जी अब बोलिए।
इसमें कहा है त्रिनाचिकेता या विद्वान, जो त्रिनाचिकेत है, तीनों गुणों को सेवन करने वाला जो विद्वान है, त्रयम् विदित्वा, तीनों को जानकर, फिर चिनुते नाचिकेतम, अग्नियों को चुनता है, जो वो अग्नियों का सेवन करने वाला है, तीनों को जानता है, तो फिर चुनने वाली बात क्या आती है?
ऐसा जानना एक अलग होता है और उसको व्यवहार में उतारना एक अलग होता है, ठीक है। जान तो जानकारी तक सीमित है ना, शब्दों से जान लिया, जैसे आप जान लेते हो ना, हाँ जान लेते हो ना कि हवन करना चाहिए और संध्या करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सब जानते हो, जान करके फिर उसको चयन करते हो ना, उसको चुन लेते हो, उसको व्यवहार में उतारते हो, फिर करने लगते हो, तब ऐसी स्थिति में वो मृत्यु पाशों को पहले से ही उसको दबा देता है, हटा देता अपने जीवन में से, अब उसको मृत्यु सताती नहीं है, शोक आती गह, और शोक रहित हो जाता है। और ऐसा ही व्यक्ति जब शोक रहित हुआ हुआ व्यक्ति है, वो स्वर्ग लोक के मोदते, स्वर्ग लोक में आनंदित होता है, ये इसका अभिप्राय। अब पकड़ में आ गए, सेवन करने वाला कहिएगा या जानने वाला कहिएगा, जानने वाला कहिएगा, तीनों अग्नियों को जानने वाला, ठीक है। ये सेवन करने वाला ये भविष्य को ध्यान में रख करके है, आपने योग न्याय दर्शन में पढ़ा था ना, चौथे अध्याय में क्या पढ़ा था? नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, जो उस प्रसंग में आए ना, पहले सुनिए, प्रसंग आपको नहीं पकड़ में आ रहा है ना, मेरे को पकड़ में आ रहा है तो मेरे को बोलने दो पहले। वहां ये प्रसंग आया था, सब कुछ सर्वम अभाव, ठीक है ना, सब कुछ अभाव है, सर्वम भी कह रहे हो और अभाव भी कह रहे हो। इस प्रसंग में वो उत्तर देता है, क्या उत्तर देता है कि क्रिया शब्दों का प्रयोग भूतकाल में भी होता है और भविष्य में भी होता है, जो है नहीं पदार्थ उसके लिए भी क्रिया का प्रयोग होता है, और जो होगा उसके लिए भी क्रिया शब्द का प्रयोग होता है। पुत्रो जनिष्यते दिया था ना, कुंभ अभूत, जनिष्यमानं पुत्रं अभिनंदति, उत्पन्न होने वाले पुत्र के विषय में सुन करके वो प्रसन्न होता है, अजाता पुत्रः पितरम पितरम संतापयति। ये सारे उदाहरण जो है ना, ये अभी है नहीं, पुत्र ही नहीं है उसको, पुत्र हुआ ही नहीं है, ना हो सकता है उसको, बहुत परेशान होता रहता है वो, ठीक है ना। तो ये जो क्रियापदों का प्रयोग है वो भूत के लिए, वर्तमान के लिए तो होता ही है, भूत के लिए भी होता है और भविष्य के लिए भी होता है, ऐसा मान करके भी चल सकते हो। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो त्रिनाचिकेत का मतलब तीनों अग्नियों को जानने वाला, बस इसमें कोई संशय आपको नहीं होगा। जान करके का मतलब है वहां पर उसको अच्छी तरह जान लिया, हाँ जान करके अब उसको व्यवहार में उतारता है। एक तो सामान्य रूप से जानना है और एक विवेक से जानना है, फिर उसके बाद वैराग्य से युक्त होकर के उसको अपनाना है, ऐसा है, ठीक है। एक तो शब्दों से जानना है और एक विवेक पूर्वक जानना है, फिर उसके बाद वैराग्य पूर्वक उसको अपनाना है, ऐसा। चले, एषा ते अग्निर् नचिकेतः स्वर्ग्यो यम वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निम् तव एव प्रवक्ष्यन्ति जनासह तृतीयं वरम् नचिकेतो वृणीष्व। अब यमाचार्य कहते हैं एषा ते अग्निर् नचिकेतः, ये जो अग्नि नचिकेता, ते अग्नि, ये तेरे नाम से कहे जाने वाली अग्नि है, एषा अग्निर् नचिकेता ते, ये तेरे ही नाम से कहे जाने वाली ये अग्नि है, जो कि स्वर्ग्यः, स्वर्ग को देने वाली अग्नि है, मोक्ष को देने वाली अग्नि है। यम वृणीथाः, जिसको तूने वरण किया मेरे द्वारा, जिसको आपने वर के माध्यम से आपने अपना लिया, मांगा द्वितीयेन वरेण, दूसरे वर के नाम से, दूसरे वर के नाम से जिसको तूने मांगा, ये वही अग्नि है जिसको तूने जाना, समझा, अपनाया, और ऐसी उस अग्नि को तेरे ही नाम से पुकारा जाएगा। एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति, स्पष्ट रूप से कह दिया है, एतम अग्निम, इस अग्नि को तव एव प्रवक्ष्यन्ति, तेरे ही नाम से कहेंगे, कौन? जनासह, जनासह कहते हैं जनता, मनुष्य, समाज। तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व, ए नचिकेतः, अब तुम तीसरे वर को मांग लो मेरे से, दो वर तो तुमने मांग लिया, अब तीसरे वर को मांग लो। पकड़ में आ रहा है, पहला वर तो पिता की कुशलता की है, पिता, मेरे पिता जो है कुशल पूर्वक रहे, प्रसन्न रहे, शांत रहे, वीतमन्यु रहे और रात को ढंग से सोते रहे, ये आदि पिता की कुशल क्षेम का वर मांगा, और दूसरा वर जो है अपनी उन्नति के लिए मांगा, ठीक है, कि मैं, मेरे को ये बताइए, जो लोग मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका क्या मार्ग है, क्या रास्ता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी किया। अब यमाचार्य कहते हैं तुमने दो व्रतों को मांग लिया, अब तीसरा व्रत मांग लो, तीसरा वर पूछो मेरे से, क्या आप जानना चाहते हो मेरे से, क्या मांगना चाहते हो, ये कहना चाहते हैं इस 19वें श्लोक में। स्पष्ट हो गया? हाँ, तो दिया था ना, अभी बताया था ना। अच्छा, आप लेट आए होंगे, आप वो अग्नि की माला दी है उन्होंने, तीनों अग्नियों की माला,
वो तो खुश होके दी, वो पहला वरदान तो पिताजी के लिए, दूसरा वरदान अग्नि प्राप्त के लिए,
दूसरा वरदान जो है अग्नि के बारे में बताया,
हाँ,
और जो अग्नि के बारे में जब बताया है तो उस जैसा बताया वैसा ही उसने रिपीट करके सुनाया, तो उससे प्रसन्न होकर के एक अतिरिक्त वर दिया है,
वो
अतिरिक्त वर दिया है, और वो अतिरिक्त वर का वर भी दे दिया उसको, ठीक है ना। अब उसने जो तीन वर उसको दिया था उसमें से दो वर हो गए, अतिरिक्त वर का भी, अतिरिक्त वर भी दे दिया था, इस प्रकार से तीनों वर हो गए, लेकिन उसको दिए गए तीन वरों में से तो दो ही हुए ना, एक बचा हुआ है। अब उस बचा हुआ जो तीसरा वर है उसको आप मांग लो, ये कहते हैं 19वें श्लोक में। अब वो मांगता है 20वें श्लोक में, या इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके एतद् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम् वरानामेव वरानाम एषा वरः तृतीयः। अब वो मांगता है तीसरा वर, कहते हैं या इयम विचिकित्सा, ये जो विचिकित्सा होती है, विचिकित्सते आया था ना, कहां पर आया था? ईशोपनिषद में,
पर इसमें नहीं,
हाँ वो एक ही बात है, कोई शब्दांतर है वहां, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो या इयम विचिकित्सा, ये जो विचिकित्सा होती है व्यक्ति को, यानी संशय, किस विषय में संशय? मनुष्य प्रेते, मनुष्य के मर जाने पर, या इयम विचिकित्सा भवति, ये जो विचिकित्सा संशय होता है किस संदर्भ में? मनुष्य प्रेते, मनुष्य के मर जाने पर क्या होता है? अस्ति इति एके, एके कुछ लोग ऐसा मानते हैं, अस्ति इति आत्मा मरने के बाद भी रहता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। नायम अस्ति इति च एके, और एके कुछ और लोग जो है, न अयम अस्ति, ये आत्मा नहीं रहता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, एतद् विद्याम अनुशिष्ट त्वया अहम्, त्वया त्वया अहम् अनुशिष्टः एतद् विद्याम्, आपके द्वारा अनुशिष्ट मैं, आपके द्वारा उपदेश किया गया मैं, एतद् विद्याम् मैं इसको जानना चाहता हूं, अर्थात आप मेरे को इसके बारे में उपदेश करिएगा जिससे कि मैं इसको विद्याम् जान सकूं। कर्मवाच्य में पकड़ में आ रहा है जी, कहते हैं वराणाम एषः वरः तृतीयः, ये मेरे तीनों वरों में ये तीसरा अंतिम वर है। ठीक है, आगे चलें। अब ये वर मांगते ही यमाचार्य को पता लग गया, अरे कैसा वर मांग लिया इसने। देवै अत्र अपि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयम् अनुरेष धर्मः, अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व मामा उपरोत्सी अतिमा सृजा एनम्। वो कहते हैं पुरा पहले, देवै अत्र अपि विचिकित्सितम्, अत्र इस प्रश्न के बारे में, आत्मा मरने के बाद रहता है नहीं रहता है, इस संदर्भ में देवों के द्वारा भी इस विषय में संशय किया गया था, उन्होंने भी संशय किया है। नहीं सुविज्ञेयम्, ये आसानी से जान नहीं सकते, इस विषय को बहुत मुश्किल है, इसलिए कहते हैं अनुरेश धर्म, ये बहुत अत्यंत अनुस्वरूप है, बहुत सूक्ष्म है, आसानी से नहीं जाना जा सकता, ये बहुत कठिन है, ये आपके बस की बात नहीं है, आप इसके बारे मत पूछना। अन्यम वरम नचकेतो वृणीष्व, तुम ऐसा करो इसको छोड़ दो, अन्यम वरम नचकेता वृणीष्व, दूसरे वर मांग लो। मामा उपरोत्सी ही, आप मेरे को बाधित मत करो, उपरोत्सी का मतलब है मेरे को परेशान मत करो, बाधित मत करो, मेरे को तंग मत करना। जब व्यक्ति मना करने के बाद भी बार बार कहता है जी करो ना, जी करो ना, जी करो ना, जी रविशंकर जी की तरह, ठीक है ना, मना कर दिया उसके बाद बार बार पीछे पड़ते हैं कि नहीं नहीं कर लो जी, कर लो जी, कर लो जी, हाँ, तो फिर बार बार पीछे पड़ने से जो है ना पता लगता है कि इनके अंदर ज्यादा जिज्ञासा है, ज्यादा तमन्ना है, ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, दया दया करके फिर उनको बताना पड़ेगा, तो इसलिए वो बार बार पीछे पड़ रहा है। तो कहते हैं मामा उपरोत्सी, मेरे को बार बार तंग मत कर। मा एनम सृजा, अति मा सृजा, मा मुझको या मत करो, अति सृजा का मतलब त्याग कर दो, एनम अति सृजा, एनम अति सृजा का मतलब है इसको त्याग कर दो, इस प्रश्न को, इस वर को आप छोड़ दो। मां मुझको बार बार मत तंग करना, पकड़ में आ रहे जी, तो मामा है तो मुझको बार बार, मुझको जो है आप जो है उपरोत्सी तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, बाधित कर रहे हो, मेरे को परेशान कर रहे हो। अतिसृजा एनम, एनम इस प्रश्न को, इस वर को तुम त्याग कर दो, छोड़ दो, मुझे मत पूछो इसके बारे में, ये बात कही जा रही है। चले अब नचिकेता कहता है देवै अत्र अपि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयम् आत्थ वक्ता च अस्य त्वाद्रिग अन्यो न लभ्यो न अन्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चेत्। वो भी उसी के पीछे पड़ा हुआ है, वो कहते हैं देवई अत्र अपि, अत्र अपि इस संदर्भ में देवई देवों के द्वारा विचिकित्सितम, इसके बारे में चर्चा की गई है, संशय किया गया है। किला निश्चित रूप से त्वमच मृत्यो हो, हे मृत्यो तुमने भी इस बात को आत्था कहा है, यत न सुविज्ञेयम, जो कि ये आसानी से जानने योग्य नहीं है। आत्था का मतलब कहा, अवदत आत्था का मतलब है अवदत, आपने ऐसा कहा। न सुविज्ञेयम आत्था, ये कठिनाई से जानने योग्य है, ऐसे आत्था आपने कहा था। त्वम, त्वम च मृत्यो, हे मृत्यो त्वम आपने, तुमने न सुविज्ञेयम आत्था, इसको कठिनाई से जानने योग्य कहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अस्य त्वादृग अन्यो न लब, अस्य तादृग अन्यो वक्ता न लभ्य। वो कहते हैं इस बात को, इस प्रश्न को बताने वाले त्वादृग, आप जैसा अन्य दूसरा वक्ता बताने वाला न लभ्य, नहीं मिलेगा, आपसे भिन्न कोई भी ऐसा कोई वक्ता इस विषय को बताने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो इसको, क्योंकि आपने ही कहा कि देव लोगों ने इसके बारे में संशय किया है और ये बहुत कठिनाई से जानने योग्य है, इसलिए इसके पीछे मत पड़ना, और आप इसको जानते हो समझते हो, तभी तो आप ये बात कह रहे हो, और आपसे बढ़कर वक्ता बताने वाला और कोई मेरे को मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो कहता है न अन्यो वर तुल्य एतस्य कश्चित, इसके समान और कोई वर मेरे सामने नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बढ़कर है, इसके बराबर का वर और कोई मेरे को दिख नहीं रहा है, इसलिए मेरे को तो इसी वर के बारे में पूछना है, आपको बताना ही होगा, ये कहना चाहते। स्पष्ट हो गया। अगला शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ती हिरण्यम अश्वान भूमेर महद आयतनम वृणीष्व स्वयं च जीवा शरदो यावदिच्छसी। अब उसको उस प्रश्न से हटाना चाहते हैं, उस बात से उसको विचलित कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं एक प्रकार से। वो कहते हैं शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व, आपको पुत्र पौत्र चाहिए मांग लो, और वो भी शतायुषः, सौ सौ साल के पुत्र पौत्रों को मांग लेना, यानी आपके पुत्र सौ साल तक जिए और उन पुत्रों के भी पुत्र जो है पौत्र जिसको हम कहते हैं पोता पोता पोती, वो भी सौ साल तक जिए, ऐसा व्रत मांग लेना मेरे से। और बहून पशुन, बहुत सारे पशुओं को मांग लेना, हस्ती हाथियों को मांग लेना, इरण्यम सोने को मांग लेना, अश्वान हाथी घोड़ों को मांग लेना। फिर कहते हैं महद आयतनम भूमे हैं, भूमि के एक बहुत बड़ा भूभाग भूखंड वृणीष्व मांग लेना, धरती के एक बहुत बड़े भूभाग को भी मांग लेना, वो भी धरती भी दे दूंगा, क्योंकि धरती भी बहुत कीमती होती है, ठीक है जी, उसको भी मांग लेना। और स्वयं च जीव, और तू भी चाहे जी लेना शरद सौ वर्ष तक, यावद इच्छसी, अथवा जब तक तू चाहेगा तब तक जी लेना, मेरे कोई आपत्ति नहीं, वो भी दे दूंगा, पर ये वर मत मांगना। समझ में आ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ, हम जैसे लोग अगर किसी को बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मांगते, दे देना इतनी धरती दे देना, आजकल बहुत कीमत की है धरती, दे देना, चलो धरती नहीं तो कम से कम सोना दे दो, कुछ दे दो इनमें से किसी, या तो गाड़ी दे दो हमको, हाँ आजकल गाड़ियों का है ना, गाड़ी दे दो, या जमीन दे दो, या कुछ भी ऐसा दे दो, हम नहीं मांगेंगे, ठीक है। अब नचिकेता कहता है एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वर, नहीं ये तो वही कह रहे हैं यमाचार्य, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतः त्वम एदि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। वो कहते हैं एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, हे नचिकेता तुम जिस वर को लेकर के मेरे से मांग रहे हो इस वर के समान, इस वर के बराबर का कोई वर हो तो वृणीष्व वरन करो। क्या हो सकता है? वित्तम, धन हो सकता है, धरती का पूरा धन आपको दे देंगे। इस वर के समान अगर कोई होगा तो धन हो सकता है, तो धरती का सारा धन तुमको दे देंगे। चिरजीवी काम च, अथवा जब तक तू जीना चाहे तब तक मैं आपको जिंदा रखूंगा। चिरजीवी काम, या तो वो मांग लो, अथवा महाभूमौ नचिकेता त्वम एधी, हे नचिकेता अगर तू ये चाहे कि महाभूमौ एक बहुत बड़े भूभाग का तू एधी स्वामी बन, उसका पालन पोषण कर, यानी उसका राजा बना देता हूं तुझे, बहुत बड़े भूभाग का एक राजा बना देता हूं, बहुत बड़े भूखंड का एक राजा बना देता हूं। अथवा कामानाम त्वा कामबाजम करोमि, त्वा तुझको कामनाम, कामानाम जितने भी कामना है उन सब कामनाओं को पूरा करने वाला, कामबाजम का मतलब है कामनाओं को पूरा करने वाला, तुझको करोमि बना देता हूं, तू जो चाहोगे वो कामना पूरी हो जाएगी। मतलब ऐसा आपको वर दूंगा, तू जो जो कामना करेगा वो वर पूरा हो जाएगा आपका, पर उस मृत्यु के बारे में मत मांगना, यानी मरने के बाद आत्मा जीवित रहता है या नहीं रहता उसके बारे में मत पूछना, ठीक है। फिर वो कहते हैं यमाचार्य, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान कामान छंदता प्रार्थयस्व इमा रमाः सरथाः सतुर्या न ईदृशा लंबनीया मनुष्य आभिर्मत् प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मा अनुप्राक्षीः। वो कहते हैं ये कामा, दुनिया में जो जो कामनाएं दुर्लभा, जो दुर्लभ कामनाएं होती हैं, मैं इस पूरी धरती का राजादि राजा बनना चाहता हूं, ये दुर्लभ कामना है, याद रखना, हर कोई नहीं बन सकता। क्यों जी? यानी एक ऐसी कामना है, इस पूरी धरती का मैं एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बनूं, ऐसी जो कामना है ये हर कोई पूरा नहीं कर सकता, ये दुर्लभ कामना है। पूरी दुनिया का कुबेरपति, यानी इतना धन, जितना धन पूरी दुनिया में होती है, वो सारे का सारे धन का मालिक बनूं, ये हर कोई ऐसा नहीं बन सकता। ऐसे आप सबके साथ दुर्लभ कामनाएं हैं, ऐसा आप सबके साथ लगा सकते, ऐसा रूपवान बना दो मेरे को कि दुनिया में तुझ जैसा रूपवान और कोई नहीं हो सकता, तुझ जैसा बलवान कोई नहीं हो सकता, तुझ जैसा विद्वान कोई नहीं हो सकता, तुझ जैसा प्रवक्ता कोई नहीं हो सकता, ये कामा दुर्लभा, ये वाली बात है, पकड़ में आ रहा है? तो कहते हैं इस मर्त्यलोके, इस मनुष्य लोक में ये कामा दुर्लभा, जो जो कामनाएं दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से पूरे किए जाते हैं, सर्वान कामान उन सारी कामनाओं को छंदता पार्थयस्व, वो स्वच्छंद होकर के बिना रोक टोक होकर के प्रार्थयस्व, मांग ले मेरे से, यानी सारी दुर्लभ कामनाओं को मांग ले। यानी तू वक्ता बनना चाहता, वक्ता भी बन, रूपवान भी बन, बलवान भी बन, धनवान भी बन, राजा भी बन, वो भी बन, ये भी बन, सब बन, जो भी दुर्लभ कामना है, जो एक एक कोई कुबेरपति है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो रूपवान भी हो, कोई रूपवान हो तो जरूरी नहीं है कि वो धनवान हो, ठीक है ना। मतलब किसी किसी में एक एक ही विशेष गुण होता है, जो जिसको आप एक्सट्रीम कहते हैं, सबसे अधिक, यानी ऐसा गुण और किसी में नहीं है, एक एक ही होता है, किसी में दो होते होंगे, किसी में तीन होते हैं, लेकिन किसी में सारे गुण हो ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जितने भी दुर्लभ कामना है वो सारी कामनाओं को तू मांग लेना, छंदता, वो भी बिना रोक टोक के, ना डरते हुए, पता नहीं देंगे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सारी कामना ऐसा नहीं, तू मांग ले जो जो दुर्लभ कामना है सब दे दूंगा। और देखो इमा रमा, ये जो रमा है अप्सराएं हैं, इनको भी तू ले ले, और ऐसे ही नहीं सरथाह, इन अप्सराओं को सरथा रथ सहित गाड़ियों सहित देना चाहता हूं, सतुरिया और उसके साथ साथ में ये भी देता हूं। सतुरिया का मतलब गाजे बाजे, ये जो मतलब उसके साथ में जो भी और आनंद के जो साधन हो सकते हैं वो भी देता हूं, गाजे बाजे सब के सब। ईदृश लंबनीय मनुष्य, मनुष्य ही मनुष्यों के द्वारा ईदृश न लंबनीय, इस प्रकार की कामनाएं बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं, नहीं हो सकते, न लंबनीय प्राप्त नहीं हो सकते, यानी ये पूरी नहीं हो सकती इस प्रकार की कामनाएं जो तुझे देना चाहता हूं। मत आभी मत प्रत्ताभी, आभी मत प्रत्ताभी, मेरे द्वारा दिए गए आभी इन व्रतों को लेकर के परिचारयस्व, इनका परिचारयस्व, इनसे सेवा ले ले, जो मैं दे रहा हूं आपको इनसे आप अपनी सेवा करवा ले। हे नचिकेता मरणम मा अनुप्राक्षी, पर मरने के बारे में मत पूछना, मरने के बाद क्या होगा आत्मा का, रहेगा नहीं रहेगा, ये बात मत पूछो, बाकी जो जो, जो चाहता है वो सब कुछ दे दूंगा, ये कहना चाहते हैं। तब नचिकेता उत्तर दे रहा है, कितना बढ़िया उत्तर दे रहा है, ये विशेष है। वो कहते हैं शोभावा मर्त्यस्य येदंतके तस् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहाः तव नृत्य गीते। वो कहता है अंतक, अंतक कहते हैं हे मारने वाले, ये मृत्यु हो, तुम तो अंतक हो, तुम तो सबको मार डालते हो, ठीक है ना, अंतक हे मृत्यु, मर्त्यस्य मनुष्य के, ये जितनी भी आप जो देना चाह रहे हैं इस मनुष्य को, यानी मुझ मनुष्य को जो कुछ भी आप देना चाह रहे हैं, शोभावाह ये कल तक ही रहने वाले हैं, सदा नहीं रह सकते, शोभाव का मतलब है कल तक रहने वाले हैं, यानी अनित्य है सारे के सारे, जल्दी समाप्त होने वाले हैं। और एतत् सर्वे अंदर एतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, एतत् जो भी आप दे रहे हो ये सब के सब इंद्रियों के वर्चस्व को, ये इंद्रियों के तेज को जरयन्ति, कमजोर करते हैं ये सब, यानी मुझ में जो तेज है उस सारे तेज को ये समाप्त करने वाले हैं जो आप दे रहे हो मेरे को, जिनको पाकर के मैं अपने तेज का ही हरण कर लूं ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसी भूल मैं नहीं करूंगा। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और एक बात, सर्वम जीवितम अल्पमेव, ये जो कुछ भी आप मेरे को दे रहे हो इन सबको मैं कब भोगूंगा, मेरा जीवन तो बहुत थोड़ा ही है, 100 साल तक जीऊंगा या थोड़ा बहुत और अधिक जी लूंगा, 150 साल, 200 साल, 250, 350, 400, आखिर कब तक जीऊंगा, मतलब धरती की सारी संपत्ति का कैसे उपभोग करूंगा मैं इतने कम समय में, और धरती के जितनी भी योग्यताएं हैं उन सारी योग्यताओं का उपयोग भी तो करना है ना मेरे को, कब कर लूंगा, जीवन तो बहुत थोड़ा है। इसलिए कहता है नृत्य तव नृत्य गीते, ये जो आपके सारे नाच गाने और ये वो सब, तव एव वाह, तेरे को मुबारक, अपने पास ही रखिए, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, तव एव वाह, आपके पास ही रहे, आप ही रख लीजिए इसको, तव नृत्य गीते, आपके ये नृत्य गीत और ये सरत ये रमा ये सब कुछ अपने पास रखिएगा, मेरे को नहीं चाहिए। और आपने ये जो बात कही थी कि सारी सारा धन मांग लेना, तो कहते हैं न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यः, अब सारा धन आप मेरे को दे दो, धरती का सब कुछ धन मेरे अकेले को दे दो तो भी न तर्पणीय मनुष्यः वित्ते न, मनुष्य इस पैसे को लेकर के तृप्त कभी नहीं हो सकता है। लप्स्यामये वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा, बहुत अच्छी बात कहे, चेत यदि त्वा तुझको अद्राक्ष्म हम देख लें, हम मृत्यु को जान ले, तो लप्स्यामहे वित्तम, हम अपने आप प्राप्त कर लेंगे ना धन को, आपको देने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी कारण से मैं मृत्यु को जान लेता तो धन तो अपने आप मिल जाएगा, धन तो प्राप्त करना बहुत छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, थोड़ा सा मेहनत करे धन प्राप्त कर लेगा, पर मृत्यु को जानना, मृत्यु को समझना, मृत्यु को जीतना कोई सरल काम नहीं है। वो कहता है चेत यदि त्वा अद्राक्षमा, यदि तुझे हम जान ले, तुमको हम देख ले, तो लप्स्यामहे वित्तम, हम तो धन को अपने आप प्राप्त कर लेंगे। जीविष्यामो यावत ईशिष्यसि, और एक बात समझ लीजिएगा, आपने ये कहा था कि चिरजीविकाम, चिर जीवन को मांग लो, अब ये कह रहे हैं, अब ऐसे बोल रहे हैं, जीविष्यामः, हम तो तब उतना ही जीवेंगे, यावद ईशिष्यसि, जितना आप चाहोगे उतना ही तो हम जिएंगे, ऐसा तो है ही नहीं है, जितना आप चाहोगे उतना ही हम जी पाएंगे, जितना जितनी आयु आप देते हो ना उतना ही तो जी पाएंगे ना, उससे अधिक थोड़े जी पाएंगे। त्वम फिर कहते हैं त्वम यावद ईशिष्यसि, तुम जितना चाहोगे उतना ही जीविष्यामा, हम जीवित रहेंगे, इसलिए वरस्तु में वरणीय सा एवा, मेरे द्वारा वरण करने योग्य वर तो वही है जिसको मैं मांग रहा हूं, उसके अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं मांगना चाहता हूं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, निश्चित का मतलब है जैसे आप टीवी खरीदने जाएंगे ना सोनी की, ठीक है ना, तो उसकी आयु भी निश्चित है, वो गारंटी वारंटी जो भी देता है 5 साल की, तो आपके लिए भी उतने साल की वारंटी देगा, मेरे लिए भी उतने ही देगा, जो भी आदमी जाएगा उसके लिए भी उतनी ही वारंटी देगा ना। अब आपके ऊपर है कि उसको आप संभाल करके रखेंगे तो 10 साल 20 साल तक चलाते रहोगे, और मैं ला करके उसको फोड़ दूंगा तोड़ दूंगा तो उसी समय समाप्त हो जाएगा, पर उसकी आयु तो निश्चित है ना, उसकी एक सीमा है जीने की, उसका लाइफ एक अवधि तक ही रहेगा ना, तो बनाने वाले ने उसी हिसाब से बनाया भाई, ये इतने समय तक रह सकता है, ऐसा इसी प्रकार हमारी आयु है। निश्चित का मतलब ये, ऐसा निश्चित नहीं है कि मैंने आपको 100 साल दे दी तो अब चाहे कुछ भी आपको आपके साथ करे तो भी आप नहीं मरेंगे, 100 साल तक जियेंगे, ऐसा नहीं। कोई मेरे को ठोक दे, टक्कर दे दे, एक्सीडेंट कर दे तो मैं आज ही मर जाऊंगा, कोई मेरे को विष दे दे तो मर जाऊंगा, अगर मैं अपनी सुरक्षा करते हुए मैं ठीक ठाक चलूंगा, ठीक व्यायाम करके, ठीक प्रकार से खान पान करके, शरीर को संभाल के रखूंगा, तो जितना मेरे को मिला उतना तो जीऊंगा ही जीऊंगा ना, ये इसका अभिप्राय है, इस रूप में निश्चित है, और जिस तरह का लोग मानते उस तरह का निश्चित नहीं है, वो नहीं है। हाँ जी, अगला देखिए श्लोक, कहते हैं अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्या जीर्यन मर्त्या क्व अदस्थः प्रजानन। अभी अध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अतिदीर्घे जीविते को रमेत। तो कहते हैं अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्या, जीर्ण ना होने वाले अमरत्व को प्राप्त करके, जीर्ण ना होने वाले अमरत्व को प्राप्त करके, जीर्यन मर्त्या, जीर्ण होने वाला ये मनुष्य, क्व अदस्थः प्रजानन, प्रजानन जानता हुआ, जीर्यन मर्त्या जीर्ण अवस्था को जानता हुआ, अथवा जीर्ण ना होने वाले अमरत्व को जानता हुआ मनुष्य, क्व अधस्ता, कौन इस निचले गति को प्राप्त करना चाहेगा। ये कहना ये चाहते हैं जब मृत्यु को जानने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा, उसमें जन्म मृत्यु होगा ही नहीं है, तो उसको छोड़ करके ये जो जीर्ण होने वाले इन समस्त पदार्थों को कौन अपनाना चाहेगा। पकड़ में आ रहा है ना, क्व अधस्ता, अधस्ता का मतलब है इस निचली गति को, निम्न श्रेणी को कौन प्राप्त करना चाहेगा, उसके सामने जब उच्च श्रेणी दिखाई दे रहा हो। पकड़ में आ रहा है ना, पर उस उच्च श्रेणी को वही प्राप्त करेगा ना जब उसके लिए मेहनत करेगा, तो मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं ना, इसलिए मेरे को वही वर बताइए जिसको मैं मांगना चाह रहा हूं। आपने तो ये कहा ना बहुत कठिनाई से जाना जाता है, तो ठीक है कठिनाई से जाना जाए मेरे कोई आपत्ति नहीं, पर मैं जानना वही चाहता हूं। जब जीर्ण ना होने वाले उस अमरत्व को ध्यान में रखता हुआ मैं इस जीर्ण होने वाले इन सब साधनों को क्यों प्राप्त करना चाहूंगा, मैं इस बात को जानता हूं मैं। प्रजानन पकड़ में आ रहे ना, अब समझ लीजिएगा। प्रजानन जानता हुआ व्यक्ति कौन, जीर्यन मर्त्या जीर्ण होने वाला मनुष्य, जानता हुआ अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्या जीर्ण न होने वाले अमरत्व को प्राप्त होकर के क्व अदस्ता कौन इस निचली स्थिति को प्राप्त करना चाहेगा। इसलिए कहते हैं अभिध्यायन, अभिध्यायन ध्यान करता हुआ यानी ध्यान पूर्वक विचार करता हुआ अथवा प्रमाण पूर्वक विचार करता हुआ व्यक्ति क्या कहता है, वर्ण रति प्रमोदान दीर्घे जीविते कोरमेता। दीर्घे जीविते, ये जो जिसको आप बहुत लंबे काल तक जीने वाली बात कह रहे हो, जिसमें वर्ण रति प्रमोदान ये सुंदर रूपों को और इस तरह के भोगों को इस विलास को इन सब को पा करके को रमेता कौन रमन करे इसमें, इस दीर्घ जीवन में जिसको आप लंबा काल तक जितने काल तक जीना चाहते हो उतना काल तक जीते रहो ऐसा जो आप कह रहे हो, इस दीर्घ जीवन को पाप पा करके कौन इसमें रमन करना चाहेगा, कोई भी नहीं करना चाहेगा। जो कि उसके सामने जीर्ण ना होने वाला अमृतत्व विद्यमान हो उसको देख रहा हो, उसको देखता हुआ इसमें कौन रमन करना चाहेगा, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है, अंतिम श्लोक देख लीजिएगा। एस्मिन इदम विचिकित्सितम मृत्यो यत सांपराये महति ब्रूहि नह तत् यो अयम वरो गूढ़ अनुप्रविष्टो न अन्यम तस्मात नचिकेता वृणीते। अंतिम श्लोक को वो कह रहे हैं यस्मिन इदम विचिकित्सितम, जिसके बारे में ये बात कही है कि विचिकित्सितम विचिकित्सन्ति, हाँ ठीक है, जिसके बारे में ये विचिकित्सन्ति लोग संशय करते हैं, जिस वर को लेकर के मृत्यो हे मृत्यो, जिसके बारे में लोग संशय को प्राप्त होते हैं, किसके बारे में, यह सांपराय जो सांपराय है, सांपराय कहते हैं विशेष मार्ग, श्रेय मार्ग को सांपराय कहते हैं, और वो कैसा है, महती सांपराय, वो महान है, उत्कृष्ट सांपराय है। तत् न ब्रूहि, ऐसे उस सांपराय के बारे में उस महान मार्ग के बारे में न ब्रूहि, मेरे को बताइए। यो अयम वरा, जो यह जो वर है गूढ़म अनुप्रविष्टा, ये बहुत रहस्य को प्राप्त कर लिया आप, आपने इसके बारे में बता दिया है तो ये और रहस्य को और गूढ़ता को प्राप्त हो गया है। न अन्यम तस्मात नचकेतो विरिणीते, उस वर से अन्य और किसी का वरण नहीं करना चाहता है, जो वर बहुत गूढ़ रहस्य को प्राप्त हो चुका है, यानी इतनी बातें सुनने के बाद ये वर जो है और विशिष्टता को प्राप्त हो चुका है, ऐसे वर को छोड़ करके अन्यम न विनीते, दूसरे वर का वरण नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे को उसी के बारे में बताइए, ये नचिकेता का कथन है। हाँ जी,
जो शब्द है ये विकारांग पुल्लिंग या आकारांग पुल्लिंग,
ये जैसे प्रचेता बनता है ना, हाँ अजी क्या
प्रचेत्री शब्द
है, नहीं प्रचेत्री होगा, प्रचेता बनता है ना, प्रचेता एक वचन में प्रथमा विभक्ति के वचन प्रचेता, ऐसे नचिकेता नचिकेतस शब्द है, प्रचेतस शब्द है, वाजश्रवस शब्द है, सकारांत शब्द है, फिर उसका सकार का लोप होता है, फिर दीर्घ होकर के वाजश्रवा नचिकेता प्रचेता ऐसा बनता है। जब व्याकरण पढ़ोगे ना, जहां नामिक नामिक पढ़ोगे ना, तब सब शब्द आ जाएंगे, तब समझ लेना, ठीक है। सकारांत शब्द है, और सकारांत शब्दों में और कौन आते हैं, हाँ वो तो अलग है, यशसी यश है, यशसी यशांसी वो अलग है।
रचेता शब्द तो सकारांत नहीं, रचेत्री शब्द है।
मोटे तौर पर सकारांत कह लो।
सकारांत तो फिर जैसे विद्वस है।
नहीं वो अलग है, अलग अलग है ना, रूपों में भी अलग अलग चलते हैं ना। विद्वान जो है वो अलग ढंग का शब्द बनता है, और यशस है तो वो यशा यशसी यशांसी वो नपुंसक लिंग में होने के कारण से यशा यशसी यशांसी है, और ये सकारांत होकर के भी पुल्लिंग में चलता है इसलिए इसमें दीर्घ बनता है, प्रचेता ऐसा बनता है। वो नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है ऐसा है।
आकारांत नहीं मान सकते,
मोटे तौर पर आप मान लेना, मेरे कोई आपत्ति नहीं। देव गोपा, हाँ वो ठीक है ऐसा मान ले, पर मोटे तौर पर जैसे इसको मैं सकारांत बोल दिया, ऐसे आप अकारांत बोल दो कोई बात, अकारांत पुल्लिंग बोल दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ओंकार कर लेते हैं। अच्छा प्रथम वल्ली पूरी हो गई। ओ प्रणाम।